السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں مرحلہ وار لاک ڈاؤن ختم کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہر شعبہ کھولنے کے لیے ایس او پیز بنائیں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر اس مشکل وقت سے نکلنا ہے تو عوام کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی تو ہمیں پھر سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. وزیراعظم نے بتایا کہ پوری دنیا شرائط کے تحت لاک ڈاؤن ختم کر رہی ہے, لہذا پاکستانی قوم کو بھی ان شرائط یا ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے 19,000 سے زائد پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لایا جائے گا. اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 1,00,000 سے زائد مزید پاکستانی شہری دنیا کے مختلف ممالک سے وطن واپسی کے منتظر ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 1 مئی سے 5 مئی تک پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے ذریعے 1,000 پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں. کرونا وائرس کے باعث ایئرپورٹس کی بندش اور فلائٹ شیڈول معطل ہو جانے سے امریکہ میں پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے قومی ایئر لائن پی آئی اے نے شیڈول جاری کر دیا ہے. ابتدان 2 پروازیں 10 اور 13 مئی کو واشنگٹن ڈی سی سے اسلام آباد اور کراچی آئیں گی. ایک اور پرواز نیو جرسی سے لاہور آئے گی, تاہم اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ پروازوں کے علاوہ مزید 3 فلائٹس پاکستانیوں کو وطن واپس لائیں گی, جن کے شیڈول کا اعلان چند روز میں کر دیا جائے گا. جن پاکستانیوں نے پہلے ہی ایمبیسی اور کونسلیٹ میں رجسٹریشن کرا رکھی ہے ان سے خصوصی پروازوں کے لیے خود رابطہ کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین کے اختیارات اور اپنے خلاف 3 انکوائریز پر دائر درخواست میں بینچ کے رکن پر اعتراض اٹھا دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی مسلم لیگ قاف کی قیادت کی جانب سے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی, جس میں چودھری پرویز الہی خود عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. بینچ کے سربراہ نے کہا کہ اس کیس کی فائل ابھی موصول ہوئی ہے. افغانستان سے ملحقہ ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتھل اور اس کے گرد و نواح میں پچھلے کئی دنوں سے موجود افغان باشندوں کو بدھ کو وطن جانے کی اجازت دے دی گئی. حکام کے مطابق ان لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وطن واپسی کی اجازت دی گئی ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی تھے جو مارچ کے وسط سے قبل پشاور اور دیگر شہروں کے ہسپتالوں میں علاج معالجے کی غرض سے آئے تھے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلم خلیلزاد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے اعلی نمائندے ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے. طالبان کے قطر آفس کے ترجمان سہیل شاہین کے مطابق ملاقات میں قیدیوں کی جلد رہائی, بین الاقوام مذاکرات اور امریکہ طالبان معاہدے پر عمل درآمد کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا. سہیل شاہین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قطر میں طالبان وفد اور خلیلزاد کی قیادت میں امریکی ٹیم سے ہونے والی ملاقات کے دوران قطری وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر مطلق القحطانی بھی موجود تھے. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت نئی دہلی میں بھارتی عہدیداروں سے ملاقات میں افغانستان اور خطے میں پائیدار امن میں بھارتی کردار پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارت کے بعد ظلم خلیلزاد اسلام آباد جائیں گے, جہاں وہ پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات میں افغان امن عمل سے متعلق بات چیت کریں گے. انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے متنبہ کیا ہے کہ شمالی اور جنوبی امریکہ کی جیلوں میں حفظان صحت کے منافی صورتحال اور طبی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے کرونا وائرس متعدد جیلوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے واضح اعداد و شمار تو پیش نہیں کیے, تاہم ان کا کہنا ہے کہ خطے بھر کی جیلوں میں بند ہزاروں قیدی اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے ترجمان روپرٹ کالویل کا کہنا ہے کہ غیر معیاری صورتحال کی بنا پر ارجنٹینا, برازیل, کولمبیا, میکسیکو اور امریکہ کے قید خانوں سے بہت سے قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں ان پاکستانیوں کی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں فلائٹس کی بندش کی وجہ سے یا کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی دوسرے مسئلے کی وجہ سے پھنس کر رہ گئے ہیں. ان پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے, اور اس سلسلے میں خاص طور پر امریکہ میں جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے 12 خصوصی پروازوں کی اجازت ملی ہے حکومت امریکہ کی طرف سے پاکستان کی حکومت کو. ان فلائٹس کی کیا صورتحال ہے اور یہ فلائٹس یہاں سے کب روانہ ہوں گی اور کب یہاں امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانی واپس وطن جائیں گے, اس بارے میں گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان اسلام آباد سے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم عبداللہ حفیظ خان صاحب.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
تو کچھ اپ ڈیٹ کیجیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت کیا صورت حال ہے پی آئی اے جو ہے امریکہ سے خاص طور پر اور دنیا بھر میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اس کا کیا شیڈیول, پروازوں کا کیا شیڈیول ہے؟
بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں کا ایک ریلیف آپریشن جاری ہے. پہلی فلائٹ ہم نے 3 اپریل سے شروع کی تھی اور ہر 10 دن کا اسکیڈول ہم فائل کر کر کے ہم ڈفرینٹ پوری انفیکٹ اب تو پوری دنیا سے ہم نے لوگوں کو وطن واپس لے کے آئے اور 10,000 سے زیادہ لوگ پاکستان واپس پہنچے پی آئی کی فلائٹوں لے کے, اور تقریباً 20,000-22,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ پی آئی کی فلائٹوں کے ذریعے اپنے اپنے ملکوں کی طرف واپس گئے. ابھی ہم لوگ کا فلائٹ آپریشن جو جاری, جو اگلا اسکیڈول ہمارا آیا ہے اس کے اندر ہماری فلائٹیں جو ہیں وہ یورپ میں ایمسٹرڈیم, فرینکفرٹ, آسلو, یو کے اور پیرس جائیں گی, جبکہ فار ایسٹ کے اندر ہماری فلائٹیں کوریا اور اب آسٹریلیا میں سڈنی جائیں گی. پہلے ہماری فلائٹ میلبرن گئی تھی, اب کراچی سے سڈنی فلائٹ ہماری آپریٹ ہوگی. مین وائل جو متحدہ عرب امارات کے اندر جو بہت سارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا فلائٹ آپریشن ریگولرلی جاری ہے اور وہ دن کی 3 یا 4 فلائٹیں پاکستان ان لوگوں کو لے کے آتی. امریکہ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمیں امریکہ براہ راست پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت ملی تھی پچھلے ہفتے, اور ہم نے 12 پروازوں کی اجازت مانگی تھی جو کہ ہمیں مل گئی. اس پروازوں کے سلسلے کی پہلی پروازیں اسی ہفتے اپنی اڑان بھریں گی, اور پہلی 2 فلائٹیں جو ہیں وہ واشنگٹن جائیں گی, جبکہ اگلی فلائٹ جو ہے وہ نیو جرسی کہ نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرے گی. آپ کے تمام سامعین سے میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ پوری کی پوری فلائٹیں پاکستانی امبیسیز اور ہائی کمیشنز جو پوری دنیا میں ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر پی آئی او آپریٹ کر رہی ہے, تو وہ تمام لوگ جو کہ ان فلائٹوں کے اوپر وطن واپس آنا چاہتے ہیں وہ فوراً سے پہلے اپنے قریبی پاکستانی سفارت خانے کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. جو ہم لوگوں کو لسٹیں سفارت خانہ پرووائڈ کرتا ہے ہم ان کو ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں. ان فلائٹوں کے اوپر جو امریکہ سے خاص طور پہ لگی ہیں یہ بھی پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ ان کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے ساری کی ساری. تو تمام لوگوں کے ساتھ گزارش اگین یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ رجسٹر کروا لیں ان کے کنسرن لوگوں سے رابطہ کر کے. جب ہمارے پاس ان کی لسٹیں آ جائیں گی اور جن جن لوگوں کے ہمیں وہ کہیں گے ان لوگوں کو ہم ان فلائٹس کے اوپر وطن واپس لیں گے. اس سلسلے کی پہلی 3 پروازیں اگلے 1 ہفتے کے اندر ہی آپریٹ ہونی ہے. تو بس یہی آپ کے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ رابطے میں رہیں اور وہ پاکستانی سفارت خانوں سے اپنے اپنے آپ کو منسلک رکھیں.
ٹکٹ کے بارے میں کچھ لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پر, خاص طور پر وہ جو کہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور 2 مہینے سے بے روزگاری کے عالم میں ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتے جتنے مہنگے ان کو ٹکٹ مل رہے ہیں.
ہمیں یہ بات کی ریئلائزیشن ہے اور کوائٹ فرینکلی ہماری تمام تر ہمدردیاں سے تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. فیئر جو ہے اس دفعہ حکومت پاکستان نے ہم لوگوں کو ڈیسائیڈ کر کے دیا تھا, ہماری کچھ ریکمنڈیشنز تھیں اس کے اوپر حکومت نے وہ فیئر ڈیسائیڈ کیا تھا. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری فلائٹیں چارٹر کے زمرے میں آتی ہیں اور پی آئی او 1-way فلائٹس آپریٹ کر رہا ہے ان سیکٹرز کے اوپر, جس کا مطلب یہ ہے کہ پروازیں پاکستان سے خالی آ رہی ہیں صرف پاکستانیوں کو وطن واپس لے کے آنے کے لیے, لہٰذا ہماری جو کاسٹ آف آپریشن ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے. جیسا کہ ہمارے سی او نے اور بلکہ حکومت کا اپنا بھی اس کے اوپر کلیئر کٹ انسٹرکشن دیے ہیں کہ ان فلائٹوں کے اوپر سے چونکہ ریلیف فلائٹ ہیں تو آپ نے کسی قسم کا منافع نہیں بنانا, کوئی پیسے نہیں بنانا, لیکن جو کاسٹ آف آپریشن ہے وہ تو وہ پورا کرنے ان کا ہونا پڑے گا. जहां तक पीआई के फेयर्स का ताल्लुक है, पीआई के फेयर तो बहुत ज्यादा कम है। जो आप देखते हैं कि कुछ गल्फ की कैरियर्स ने अपने फेयर अनाउंस किए हैं वो $3,200 वन वे से शुरू होके $10,000 तक है। हमारा फेयर इससे आधा है। तो उस हिसाब से तो हमने हमारी भरपूर कोशिश ये है कि किसी तरीके से कम बोझ हम ऐसे लोगों के ऊपर डालें जो बहालत मजबूरी वतन वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी मजबूरी भी हमारी भी है कि हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है जो कि हमें इसके अंदर से पूरी करनी पड़ेगी।
तो क्या फिर वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहीं फंसे रहे?
नहीं, इस तरीके से नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं देखिए, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो कंसर्न एम्बेसीज के साथ अगर रबते में रहेंगे तो कोई ना कोई तरीका और कोई ना कोई रबता वो कोई हो ही जाएगा। इस तरीके से कोई अरेंजमेंट उनका हो जाएगा। फिर भी जिस जिस तरीके से हमारी फ्लाइटें ऑपरेट करेंगी, हम ये उम्मीद करते हैं कि होपफुली तीसरी या चौथी फ्लाइट के ऊपर शायद हम लोगों को ऐसी अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट हमारी कम हो जाए और इसका जो है इम्पैक्ट रिजल्टेंटली फेयर्स के ऊपर भी आए।
अच्छा, वो ये भी बाज लोगों को ये भी तश्वीश है कि इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ फंसे हुए हैं, कोई तो उनके लिए क्या ये 12 फ्लाइट्स काफी होंगी?
देखें, हम लोगों ने एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक डिमांड कैलकुलेट की थी जिसके बाद हमने परवाजों के लिए इजाजत मांगी थी। अगर ऐसा हुआ कि 12 परवाजें, हमें पता लगा कि 12 परवाजें जो हैं नाकाफी हैं, तो हमारा इरादा ये है कि हम मजीद परवाजों की इजाजत हुकूमत अमरीका से मांग लेंगे। अभी 12 हम लोगों का अंदाजा यह है कि 12 फ्लाइटें अगले कोई 1.5-2 महीने के अंदर बहुत बड़ा एक चंक जो है जो कि डेस्परेटली वतन वापस आना चाहते हैं उनको पूरा कर लेगा। हमारे पास तकरीबन कोई 5,000-5,500 नशिस्तें होंगी या सीटें होंगी जो कि हम लगाएंगे वतन वापसी के लिए। अगर इसके बाद भी अगर डिमांड आती है या इसके बाद भी हमें डिफरेंट डिफरेंट हल्कों से ये बात पता लगती है कि और लोग हैं जो कि आना चाहते हैं वापस, तो हम मजीद परवाजों की इजाजत मांगेंगे।
तो ये बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई कि लोग परेशान होना छोड़ दें। अगले 2 महीने तक आप पीआईए की कोशिश ये होगी कि जितने भी फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, खासतौर पर यूएस में, वो उनको वापस पाकिस्तान ले जाएंगे।
बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही बताना मैं ये चाहता हूँ। देखिए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये बात आ रही है और ये हमें भी इस बात की खबरें मौसूल होती जा रही हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और डायस्पोरा में काफी तश्वीश की लहर है इस बात के ऊपर कि जीपीआई परवाजें कब तक चलाएगा या परवाजें जो है वो रेगुलरली चलेंगी या नहीं चलेंगी या दरमियान में कोई अब्रप्टली फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। मैं सबको ये बात यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमने पीआईए एक पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है और उस हिसाब से हम तमाम पाकिस्तानी कौम की एयरलाइन। इसका मतलब यह है कि तमाम पाकिस्तानियों का पीआईए के ऊपर हक है और पीआईए वो हक अपना भरपूर तरीके से पूरा करने की सलाहियत भी रखती है और इरादा भी रखती है। इस चीज के ऊपर जो जिस तरीके से हमें देखें, जहां पे भी आया हम अपनी तरफ से बगैर किसी कमर्शियल मकसद के हमने जहां जहां हमें फ्लाइटें ऑपरेट करनी पड़ी, जहां जहां हमें आती रही, हम उन जगहों के ऊपर भी गए जहां पे ट्रेडिशनली पीआईए ने पहले फ्लाई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ये वॉशिंगटन भी है, हम पीआईए का एक भरपूर ऑपरेशन था जो कि शुमाली अमेरिका के अंदर पीआईए चलाया करती थी 2017 तक, लेकिन हम लोगों ने हमेशा न्यूयॉर्क, शिकागो या ह्यूस्टन ऑपरेट किया। वॉशिंगटन कभी हमने ऑपरेट नहीं किया या इस दफा जो हमारा इरादा डेलिस का है या न्यू जर्सी का है, या हमने कभी पहले एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट नहीं किया। तो हमारी भरपूर कोशिश ये है कि जिस हद तक हो सके हमारी इस पूरे जो कौमी खिदमत के अंदर जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके वो हम पूरी करें। तमाम लोगों का जिस तरह मैंने आपको बोला है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पीआईए के साथ है, लेकिन पीआईए की थोड़ी सी वो रिस्ट्रेंट भी है इस पूरी चीज के अंदर, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि दिस इज नॉट अ रेगुलर ऑपरेशन, या हंगामी हालात के अंदर बहुत जल्दी प्लान हुआ वो ऑपरेशन था। एयरलाइन ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको पहले से लेने पड़ते हैं, उसके बाद आपका ऑपरेशन सर अंजाम पाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन जगहों के ऊपर जहाँ पे आपने ऑपरेटिंग किया होता है वहां पे आपके जो हैंडलिंग एजेंट्स होते हैं वो आपके पास नहीं होते, वो तमाम मुआयदे आपको इमरजेंसी हंगामी बुनियादों के ऊपर करने पड़ते हैं। लैंडिंग, ओवरफ्लाइंग, नेविगेशन, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन जिन जगहों के ऊपर आप रेगुलरली ऑपरेट करते हैं या जिन जगहों के ऊपर आप जाना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है उन जगहों के ऊपर प्लानिंग करने के लिए, तो आप ये चीजें मरहला वार कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ के ऊपर चूंकि हंगामी ऑपरेशन है तो ये चार्टर की सूरत में ये फ्लाइटें आती हैं, इन फ्लाइटों की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होती है। जिस तरीके से ऑपरेशन नॉर्मलाइज होता रहेगा या जिस तरीके से हमारी रेगुलरिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये कॉस्ट कम आएगी। और पीआईए का ये पूरा इरादा है कि कॉस्ट कम होते ही इसका इम्पैक्ट आगे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाए। पीआईए किसी सेठ की या पीआईए किसी कोई निजी एयरलाइन नहीं है जिसका मकसद इस पूरी सूरत हाल के अंदर पैसे कमाना है। हमें कौमी एयरलाइन है, हम जितने पैसे कमाएंगे वो भी हुकूमत की मिल्कियत है, और हुकूमत जिस तरीके से पीआईए को यूज करना चाहती है पीआईए उसी तरीके से काम करेगी।
एक आखिरी सवाल, ये जो एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो फ्लाइट स्पेशल चलनी है वो कब चलेगी, उसकी डेट? वो बहुत परेशान है कि उनकी डेट नहीं उनको क्लियर हो रही कि किस डेट को उन्हें बुलाया जाएगा, और मुख्तलिफ स्टेट्स में मौजूद हैं इस वक्त, वो उन्हें ये नहीं पता कि वो कब उस जगह पहुंच पाएंगे जहां से फ्लाइट चलेगी।
अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा एक बड़े आजम है, और पाकिस्तानी आई एम श्योर पूरी इस पूरे बड़े आजम में मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है। पीआईए के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर जगह फ्लाइट्स ऑपरेट करे। मैं इसलिए मैंने पहले गुजारिश की थी कि अगर वो तमाम लोग पाकिस्तानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के साथ अगर रब्ता रखेंगे और अपने आप को रजिस्टर करवा के रखेंगे तो वो उनको टाइमली इंफॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट कोस्ट के जिन जिन जगहों के ऊपर पीआईए ने ऑपरेट करना है उसके सराउंडिंग के अंदर जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या रहते हैं उनको पाकिस्तानी एम्बेसी दिन के हिसाब से पहले बता देगी कि फलानी तारीख को फलानी एयरपोर्ट के ऊपर पीआईए का जहाज आएगा, तो उस हिसाब से वो अपने सफर को प्लान कर सकेंगे। तो इस पूरी चीज के अंदर की ये है कि अपना रابطہ पाकिस्तानी एम्बेसीज और मिशंस के साथ रखें, अपने आप को उनके साथ रजिस्टर कराएं ताकि उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही हो तो आप खुद फॉलो अप रखें, और अगर आपको एम्बेसी नहीं दे पाती तो आप आगे पाकिस्तान में पीआईए के कॉल सेंटर कॉल करके उनसे भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
ठीक, बेहद शुक्रिया। तो अगर कोई पॉसिबल डेट आप बताएंगे जो वाशिंगटन से जो हवाई जहाज चलेगा अब वापस ले जाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे?
देखिए, पहला हमारा जहाज जो है वो अगले 3 दिन के अंदर वहां से ऑपरेट करेगा,
और 10 से 12-13 तक दो परवाजें चल पड़ेंगी।
जी जी,
ठीक है, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला हाफिज खान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। ये थे पीआईए पाकिस्तान के तर्जमान अब्दुल्ला हाफिज खान, जो इस्लामाबाद से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इस बारे में कि दुनिया भर में और अमेरिका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को उनके वतन पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए पीआईए क्या बंदोबस्त कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
ताजा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बोस्टन के एक हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर सहूर खान से, जो इस वक्त फेलोशिप कर रही हैं कार्डियोलॉजी के शोबे में और खास साथ इस वक्त देख रही हैं कोरोना के मरीजों को। तो पूछते हैं कि बोस्टन में जिस हॉस्पिटल में काम करती हैं वहाँ पेशेंट्स का क्या हाल है और कितने पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं और ये किस तरह हैंडल कर रही हैं और क्या इसके लिए इन्होंने खास तौर पर कोरोना की कोई ट्रेनिंग ली। सहूर, बताइए हमारे सुनने वालों को कि इस वक्त बोस्टन में जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहाँ कितने पेशेंट्स रोजाना आ रहे हैं कोरोना के और आप उनको कैसे हैंडल करती हैं?
हमारे मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि जो है ना हमारे आईसीयू लेवल बेड्स पे, जिस तरह हमारा नॉर्मली जो आईसीयू लेवल बेड्स होते हैं नॉर्मल हॉस्पिटल में अबव 40 होते हैं। इस पूरे सर्च के लिए हमने जो प्लान किया तो हमारे पास अब जो है 165 आईसीयू बेड्स हैं। इसमें जो है राइट नाउ देयर आर ओनली 20 ओपन आईसीयू बेड्स जो 165 है, और ये इस वजह से है क्योंकि हमने सर्च जो है Actually, we hit surge in April, end of April. So, अब जो है ना रोजाना रोजाना जो है जो ICU में patients आ रहे हैं, जो hospital hospitalizations आपकी वो steady हो गई हैं, और जो ICU में patients आ रहे हैं वो वही हैं जो floor से जो है ICU में transfer हो गए।
सारे कोरोना के हैं या दूसरे?
जी ये सारे कोरोना के हैं, दिस इज ओनली कोरोना। हमारा अस्पताल इस तरह डिवाइड किया गया है कि जो उसमें हमारी सर्च प्लानिंग है वो सारे कोरोना के पेशेंट्स के ही मुतालिक है। ये जो 165 आईसीयू बेड्स मैंने आपके बताए ये सारे डेडिकेटेड सिर्फ कोरोना के पेशेंट के लिए।
तो बाकी पेशेंट्स जो है वो दूसरे हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिए गए?
नहीं जी, वो भी उनके लिए भी जगह है बट उनकी कैपेसिटी हमारे पास बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो यस इन अ सेंस कि वो काफी दूसरे अस्पतालों में, पर हर अस्पताल में उनके लिए बहुत कम कम जो है जगह है। हम वो भी पेशेंट्स डायरेक्ट ले रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर किसी को डिनाई तो नहीं कर सकते, बट कैपेसिटी वाइज हमारा पूरा अस्पताल अब यही समझे कि 95% कोरोना बन गए।
तो कितने हॉस्पिटल हैं यहाँ बॉस्टन में अंदाजन?
बॉस्टन में मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि कितने अस्पताल है, मेरे इल्म में नहीं है, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारा अपना जो एक सिस्टम है बहुत बड़ा सिस्टम, उस एक सिस्टम के अंदर सिर्फ 9 अस्पताल है और इस सिस्टम के बावजूद 2 या 3 और सिस्टम्स है।
तो ओवरऑल कुछ अंदाजा के पूरे बॉस्टन में या इन हॉस्पिटल्स में कितने कोरोना के पेशेंट्स होंगे इस वक्त?
पूरे अस्पताल में ये आपका डाटा है, ये मैसाचुसेट्स की जो है ना वेबसाइट के ऊपर रोजाना आता ही है। मैं आपको कल का बता सकती हूँ कि कल कितने जो है ना ये टेस्ट किए
बताइए
गए थे। तो
हाँ कितने थे?
ये अब मैं आपको बल्कि ये जिस तरह थोड़ी सा मैं आपको ये April 28 का डाटा बता देती हूँ कि April 28 वाले दिन 1,840 न्यू केसेस, 150 डेथ्स और 60% हॉस्पिटलाइजेशन रेट, और उस वक्त जो है 3,875 पीपल वर इन द हॉस्पिटल। जब ये सब कुछ शुरू किया गया था तो हम लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि हमें आईसीयू लेवल की कैपेसिटी जो है हमें हम देखेंगे पूरे मैसाचुसेट्स में तकरीबन 3,000 कोरोना के पेशेंट्स, और हमारे पास उस वक्त सिर्फ 2,000 आईसीयू बेड्स की कैपेबिलिटी थी पूरे मैसाचुसेट्स में।
अच्छा, तो वेंटिलेटर्स वगैरह सब कुछ तो अवेलेबल हैं?
जी हमारे अस्पताल की खुशकिस्मती ये थी कि हमारे अस्पताल ने अभी रिसेंटली जो है कि वेंटिलेटर्स रिप्लेस किए थे, तो हमारे पास पुराने भी पड़े हुए थे और नए वाले भी थे, पर यह हर जगह इस तरह मौजूद तो नहीं होते, खास तौर पे जो न्यूयॉर्क में हाल देखा गया।
तो कुछ अमवात भी हुई यहाँ पर आपके हॉस्पिटल्स में कोरोना से कुछ मरे फौत हुए?
ऑल द टाइम इसमें आई थिंक कि कुछ कुछ चीजें अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट वगैरह बहुत है, काफी यानी पॉपुलेशन हमारे पास है, तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो पेशेंट्स जो अस्पतालों में पहुंच जाएंगे ट्रीटमेंट के, यानी उनको अस्पताल का ट्रीटमेंट चाहिए, और फिर वो जो डिकॉम्पेंसेट करके आईसीयू चले जाते हैं, उन लोगों के रिस्क फैक्टर। अभी तक हमारे हल में ये है कि जो पेशेंट्स आपके 70 साल से ऊपर है उनका काफी ज्यादा रिस्क है कि वो आईसीयू लेवल ऑफ केयर में होंगे या फिर टुवर्ड्स मोर्टैलिटी। अलबत्ता ये एब्सोल्यूट्स तो नहीं है, ये तो हम ओवरऑल लाइक यू नो परसेंटेजेस एंड प्रोबेबिलिटीज, और इस तरह नहीं है कि आप यू नो यू आर 20 years ओल्ड और आपको आईसीयू लेवल की केयर शायद जरूरत पड़ जाए, उस तरह के भी हमने पेशेंट देखे हैं।
तो ये जो इलाज कह रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या दवाएं दे रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप लोग?
ये शुरू शुरू में हुआ था उस वक्त ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, हम तकरीबन जितने पेशेंट्स पॉजिटिव थे सारों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि कुछ कुछ स्टडीज निकली थी चाइना से जिन्होंने कहा था कि शायद बेनिफिट है। अब क्या कहते हैं उसका बेनिफिट हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे, और वो काफी वो रैंडमाइज कंट्रोल्ड टाइप ऑफ ट्रायल्स में प्रिलिमिनरी जो आपका सारा डाटा है वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बावजूद जो है क्योंकि ये सारे पेशेंट्स मॉनिटर्ड सेटिंग्स में है और जो जितने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कॉम्प्लिकेशन थे वो सारे खड़ी कॉम्प्लिकेशन थे, तो क्योंकि दे आर इन अ मॉनिटर्ड सेटिंग तो हम फिर भी जो है ज्यादातर दे ही रहे हैं सोच समझ
यानी
के,
ये
ब्लाइंडली नहीं दे रहे थे जिस तरह पहले दे रहे।
तो आपने अपनी आंखों से कुछ लोगों को फौत होते हुए देखा कोरोना से?
आई थिंक 1 to 2, 1 इज अ मोर लाइकली यू नो नंबर, पर मैं उसमें आपको ये बता दूं कि ज्यादातर ये वाले पेशेंट्स जो है ना फौरन इस तरह नहीं होते कि फौत हो जाते हैं, ये लोग बेचारे 20 20 दिन वेंटिलेटर के ऊपर, यानी 25-25 दिन वेंटिलेटर के ऊपर। तो आप यानी जाके आप इधर उधर चेंजेस वगैरह और वो सारी चीजें आप तो कर रहे हैं, पर आपको इस तरह फील होता है कि जिस तरह आप कोई हेडवे नहीं बना रहे, यानी आप वो बिल्कुल छोटी मोटी चीजें आप उनकी जो है ना ठीक कर लेते हैं, पर वो ओवरऑल इम्प्रूव नहीं हो रहे।
और अभी भी जो पेशेंट्स हैं आईसीयू में, उनका भी यही हाल है कि बस वो वेंटिलेटर्स पर
जी
हैं और ये उम्मीद नहीं है कि वो बचेंगे।
उनमें से कुछ कुछ हैं जो यानी जो यंगर आपके पेशेंट्स हैं उनके लिए हम फिर भी उम्मीद रखते हैं। मैं जो 70, 75, 80 उनके लिए जो है ना उम्मीद मेरी उस तरह बहुत कम है, क्योंकि वेंटिलेटर के अपने मसले मसाइल भी होते हैं। उनको आप जाहिर है होश में तो नहीं रखते ना, क्योंकि ट्यूब डाउन द थ्रोट। तो बूढ़ों के लिए फिर वो सारे मेडिकेशन मेटाबोलाइज करना, काफी सारे मसले में और सेकेंडरी इन्फेक्शन, और यानी इस बीमारी में हम ये भी देखते हैं कि चले लंग्स आपके तो फेल हो गए हैं, उसके बाद जो है मोस्ट कॉमनली आपके किडनी फेल हो जाते हैं, उसके बाद जो है देखिए लोगों को ये मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, यानी कि दिल का फंक्शन जो है वो रोबस्ट नहीं रहता, वो भी कम हो जाता है। कई लोग जो है वो क्लॉट्स डेवलप कर जाते हैं हर जगह। तो अब दिस इज ऑल न्यू एंड दिस इज ऑल, यानी कि जो हमारी सारी पुरानी नॉलेज है, पुरानी नॉलेज एक एक डिजीज के बारे में लेके इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और जहां तक हमारा अंदाजा होता है कि इन लोगों को वाकई में बेहतर हो जाना चाहिए, वो उस लिहाज से रिकवरी नहीं कर रहे। कुछ लोग जो यंग जिनके कोई और मसले मसाइल नहीं है वो काफी रिकवर हो रहे हैं, जो अन्य सी बात है जो बूढ़े हैं वो नहीं हो रहे।
वो नहीं हो रहे। अच्छा, ये आपको ये श्योर होता है कि ये जो फौत हो रहे हैं ये सिर्फ कोरोना ही की वजह से हो रहे हैं या किसी और बीमारी की वजह से नहीं हो रहे फौत?
मैं आपको बता दूं कि ये काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज निकली है कि वो डॉक्टर जो है ना ये कोरोना लिख रहे हैं। जब आपका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, हॉस्पिटल आपको कहता है कि डेथ सर्टिफिकेट लिखो, तो उसमें आप सबसे पहली चीज ये लिखते हैं कार्डियक अरेस्ट या यानी कि लंग फेल होना या हार्ट फेल होना। ठीक है, जो मौत की वजुहत है वो तो वही है, राइट, कि आपका दिल बंद हो गया। चले, दिल बंद होने की वजह कोरोना थी, तो आई थिंक ये काफी मिसकंसेप्शन है अबाउट हाउ डेथ सर्टिफिकेट्स आर रिटन। ये एक प्राइमरी कॉज होती है, उसके बाद सेकेंडरी कॉज होती है, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज का। अब क्या कहते हैं, अगर कोरोना ने मेरा किडनी फेलियर कॉज किया है या फिर मेरे लंग्स को किया है, ठीक है मेरा प्राइमरी इश्यू तो मेरे लंग्स है, पर वो अल्टीमेटली तो कोरोना की वजह से ही है ना।
सही सही। तो सहूर, आप ये बताइए कि एक डॉक्टर जो है इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स के लिए क्या क्या कुछ कर रहा है, खासतौर पर जब वो इंतकाल कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो उन
जी
अगर वो मुस्लिम भी देखे आपने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में या पाकिस्तानी कहीं?
मुस्लिम में मैंने कम जी मुस्लिम मैंने कम देखे हैं, पर यहाँ पे कोई विजिटर्स अलाउड नहीं है, पूरे हस्पताल के स्टे में विजिटर्स अलाउड नहीं है। तो ये बेचारे जो फौत होते हैं अगर वेंटिलेटर पे होते हैं, तो हम फिर यानी कोशिश यही करते हैं कि या नर्स या कोई डॉक्टर उनके साथ बैठ, जब आपको पता लग रहा है कि ये उस तरफ जा रहे हैं, कोशिश यही करते हैं कि चले अगर फैमिली कॉल करनी चाहिए तो उनके यानी कानों के साथ फोन लगा दें। बाकी जो इनका प्रोसीजर वही है कि फिर यानी कि पूरा रूम डिसइंफेक्ट हो जाता है, वो एक ब्लैक बॉडी बैग आता है, आप पेशेंट को उसमें वो करते हैं, एंड देन अब हर एक फ्यूनरल होम का अपना प्रोसीजर है, पर ये नहीं हम अभी इजाजत दे रहे कि पेशेंट की फैमिली जो है ना आके उनको हस्पताल में देख सके।
तो तदफीन के लिए डायरेक्ट फिर भेज दिया जाता है फ्यूनरल होम्स में,
जी
और लेकिन उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको पता होता है कि
जी उनको तो हजार हम इन्फॉर्म कर देते हैं, वो ही ज्यादातर वो ही फ्यूनरल होम जो है हम उन्हीं से पूछते हैं कि कौन सा फ्यूनरल होम, क्योंकि बॉडी तो आपके मॉर्ग में जाती है और बाकी फिर फ्यूनरल होम आके उनको बॉडी को जो है लेके जाता है। अलबत्ता इट इज अ वेरी वेरी सैड टाइम, क्योंकि और सारे जितने जितने पेशेंट्स हैं तकरीबन और डाइंग अलोन।
अच्छा, एक और सवाल सहूर मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि डॉक्टर्स खुद कितना खतरे में हैं यहाँ अमेरिका में जो हॉस्पिटल्स में हैं, क्या उनको तमाम इक्विपमेंट मिला हुआ है या वो पूरे हिफाजती इकदामात उनके लिए मौजूद हैं कि वो इलाज भी करें और कोरोना से खुद को भी महफूज रख सकें?
आई थिंक इसका जो है ना काफी मल्टी फैसेटेड रिस्पॉन्स यही होगा कि एवरी हॉस्पिटल सिस्टम हैज बीन डिफरेंट. जो न्यूयॉर्क के पास कोई वार्निंग नहीं थी, ठीक, और हमारा जो डाटा शो करता है वो यही है कि 20% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स गेट इन्फेक्टेड. हमारा जो अस्पताल है, शुक्र है उनके पास जो है ना ये सारी चीजें अभी तक मौजूद है. जहां तक N95 की बात रहेगी, जो रेस्पिरेटर मास्क आपका होता है, वो हर जगह शॉर्टेज में है, वो हर जगह शॉर्टेज में है. तो उसकी वजह से पॉलिसीज बन रही है कि यू नो सर्जिकल मास्क काफी है, सर्जिकल मास्क के ऊपर आप फेशियल पहन लें. तो अभी तक हमारे अस्पताल में ये है कि ये सारा PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है काफी है विदाउट N95, बट सारा क्रिटिकली लो. एंड ये सारे जो ICU के लेवल के पेशेंट्स होते हैं, देयर ऑल क्रिटिकली इल. तो उनके कमरों में बार बार जाना, बार बार जाना, चेंजेस करना, ये ड्रिप्स की चेंजेस करना, वो हर एक जो आप चक्कर लगाते हैं अंदर, तो देन दैट इज वन PPE. सो दिस इज व्हाई इट इज सच एन इशू.
एक दिन में कितने तब्दील करती हैं आप पूरा जो इक्विपमेंट है पहनती?
नहीं जी जी. सो जो हमारा गाउन और ग्लव्स होता है वो मैं हर कमरे के अंदर तब्दील करती हूँ. 12 घंटे की शिफ्ट में एक कमरे में एटलीस्ट क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि कम से कम 12 दफा तो जा रहा हूँ. हर यानी कि आप कोई ना कोई चेंज होती है, आपको अंदर जाके देखना होगा. दूसरा, पूरे अमेरिका में ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की शॉर्टेज है. तो जो पहले डॉक्टरों के हिस्से में काम नहीं जो आता था, खासतौर पे ये वेंटिलेटर के जो चेंजेस होती हैं, यही भी काफी लोग अब कर रहे हैं. तो बर्डन उस पर भी बहुत बढ़ गया है कि जाहिर है आपकी पास जो रिसोर्सेज है वो इतने स्ट्रेच्ड आउट थिन है कि आपको यू नो वो जो काम 3 बंदे करते थे शायद 1 बंदे को करना पड़े.
तो 12 दफा तो आप गाउन और ग्लव्स बदलती हैं और मास्क?
जी नहीं, मास्क मेरा वही रहता है. 12 घंटे में एक ही जो है वो पहनते हैं.
वो पहनते हैं. अच्छा, और फिर घर आकर उसी तरह आप लोग फिर अपना लिबास बदल के नहा धो के वगैरह सब कुछ?
जी जी जी. और वो भी लिबास जो है वो भी हर बंदे की प्रेफरेंस है, बट वायरस का यही है कि 3 डेज जो है आपके क्लोथ के ऊपर रहता है. तो यानी कि साथ ही ये लाइसॉल के साथ सैनिटाइजर के अंदर जो है वॉशिंग मशीन में डाल के.
बहुत मुश्किल में है डॉक्टर सारे, यहाँ अमेरिका में भी और दुनिया
भर में. डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी, हर जो ये हेल्थ केयर में काम कर रहा है उस तरह बहुत मुश्किल है. और जाहिर है तकलीफ आपको ये भी है क्योंकि एक तरफ जो है ना आप इकोनॉमी भी देख रहे हैं और लोग जो है ना अपने जॉब्स भी लूज कर रहे हैं. तो फील बहुत होता है दोनों तरफ से.
कभी कभी दिल ये नहीं चाहता कि मैं छोड़ ही दूं ये नौकरी?
कभी कभार दिल चाहता है, पर यू नो आपको जो दिन जिस दिन आपको लगता है ना कि मैं छोड़ दूँ, वो उस दिन होता है कि जब आपके पेशेंट्स कोई इम्प्रूवमेंट कोई कर नहीं रहे, तो आपको लगता है कि यानी बिल्कुल ही आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहे, वो आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है. डर डर जो है ना, डर है तो थोड़ा बहुत तो डर हर बंदे को लगता है, पर ये तो सारी चीजें बल्ला क्या.
कोई खास ऐसा मरीज जिसको देखकर आप बहुत परेशान हो गई, कोई ऐसी कहानी जो आप सुनाना चाहें इस वक्त हमारे सुनने वालों को जो आप पर गुजरी?
आई थिंक कि जो मैं सुनाना चाहूंगी वो यही आई गेस होगा कि मुझे कोरोना तो हम सारों के यानी कि सारों के जुबान के ऊपर चढ़ा रहा है. कोरोना तो हर एक आदमी जानता है. आई थिंक कि जो मेरा अभी तक स्टेटस केस होगा वो कोरोना के मुतल्लिक है ही नहीं. वो बेचारे जो है 65 ईयर ओल्ड, जिस तरह एक पेशेंट हमारे पास आया, तो उनको जो है ना 4-5 दिन से जो है ये सीने में दर्द हो रहा था. और वो जो है ना इतने डरे हुए थे ER आने के, वो आने से, अस्पताल आने से, ट्रीटमेंट या किसी डॉक्टर से बात यू नो इतने वो डरे हुए थे कि जो है वो नहीं आए. जब वो आए तो हमें पता लगा कि इनको काफी बड़ा हार्ट अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा. और यानी कि उनका जो नॉर्मल आपका हार्ट एक फंक्शन अगर 60% है तो उनका 15% पे पहुंच गया. और उनके सिम्टम्स जो है इतने बढ़ गए थे कि फिर उनको मजबूरन ही आना पड़ा. तो अब हमने अपनी तरफ से जो है ना कोशिश की, पूरा जो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि स्टेंट और वो सारी चीजें हमने की, बट उसके बावजूद जो है वो शॉक में चले गए. और नहीं उनको वापस लेके, यानी कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं, और वो फिर उसके तकरीबन और 5 दिन बाद जो है फौत हो गई। तो आई थिंक कि मैं सिर्फ यही देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी उस तरह तकलीफ हुई जी, अब डर यानी कि बिल्कुल एक तरह से इज वेरी जस्टिफाइड, बट इसका ये जस्टिफिकेशन का ये मतलब डर की वजह से जो है आप बाकी सारे प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करें, क्योंकि कोरोना की वजह से या हार्ट अटैक और स्ट्रोक और जो बाकी सारे मसले मसाइल जो आम बंदे को रेगुलरली होते रहते हैं वो भी तो नहीं जाए।
तो क्या इस वक्त, चलिए कुछ मैसेज दीजिए पाकिस्तानियों को और जो लोग आपको सुन रहे हैं सब दुनिया भर में, क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर एक बॉस्टन के हॉस्पिटल में जो एक कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही है?
आई थिंक मेरा मैसेज यही होगा सबसे, यू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल के होक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, होक्स तो नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये नहीं आपको लग नहीं सकता या आप बीमार नहीं हो सकते तो दैट इज ऑल रॉन्ग, ठीक है। हम लोगों ने यू नो जिस जितना अपने इल्म में है उस हद तक हैंडल करने की कोशिश की है, बाद में ये काफी बातें गलत भी निकल सकती हैं, काफी बातें सही भी निकल सकती हैं, पर अभी के लिए जो हमें पता है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथों को धोना जो है ये आपके सबसे तीन जो है ना आर स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। और तीसरे मैं ये फिर यही बात करूंगी कि आपको यानी कि कोई तकलीफ हो तो यस, यानी कि अभी एक पूरा एनवायरनमेंट खौफ का बना हुआ है, पर कोई भी तकलीफ हो तो आप बिल्कुल भी ना डिले करें कि आप मेडिकल केयर सीख करें।
जरूर करें, शक हो जाए तो
जी बिल्कुल
टेस्ट करवाएं और डरे
जी,
नहीं।
अगर नहीं, और अगर आपको ये भी नहीं है कि ये कोरोना के सिम्टम्स नहीं है मैं वैसे ही नहीं जाता, नहीं, जो भी आपको तकलीफ हो आप जरूर अपने डॉक्टर से रابطہ करें।
और आपके के लिए आजकल तो टेली टेली हेल्थ चल रही है।
हमारे क्लिनिक सारे जी टेलीहेल्थ में कन्वर्ट हो गए।
उनसे रब्ता करें और जो भी जिसको भी शक हो वो जरूर, वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता है।
जी
जी सहूर खान, डॉक्टर सहूर खान, आप इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं और आप हैं, और आप मुझसे बात नहीं कर रही थी कि नहीं जी मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, और आपने आपने जिस जिस अंदाज से समझाया, मैं समझ रही हूँ कि एक एक लफ्ज लोगों को समझ में पूरी तरह से आया है।
करे
बहुत शुक्रिया, बहुत
ये
शुक्रिया।
चार पांच बंदे अगर घर में बैठ जाए उसमें से तीन, हर एक एक बंदा जो यानी एक बंदा जब इन्फेक्ट होता है ना और वो आप सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीजें फॉलो नहीं करते तो वो एक बंदा तीन और लोगों को बीमारी दे सकता है। तो मैं कहती हूँ कि ये अगर इस तरह का कोई मैसेज जो है एक ही बंदे को चला जाए ना तो वो तीन लोगों को बचाने के बराबर है। तो एज अ मुसलमान और हम खास तौर पे रमजान के जो है ना महीने में ये हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह की तो ये पसंदीदा बात होगी कि आपके एक एक्शन से अगर एक बंदा घर बैठ जाए और उससे तीन बार जाने बच जाए तो फिर अमीन से ज्यादा फिर अल्लाह आपको।
और हमें उम्मीद है कि सऊर खान, डॉक्टर सऊर खान, आपके इस मैसेज से हजारों लोगों तक ये पैगाम जब पहुंचेगा तो हजारों लोगों को इसका फायदा होगा और बहुत सारे लोग जो है महफूज हो जाएंगे कोरोना से। जिस अंदाज में आपने समझाया है ये, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक मेडिकल डॉक्टर से जो फेलोशिप कर रही हैं कार्डियोलॉजी की बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में, और इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, कोरोना के पेशेंट्स को देख रही हैं, और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी कि अमेरिका में किस तरह कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है और पाकिस्तानी डॉक्टर्स किस तरह इस शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इन मुश्किल हालात में भी बड़ी साबित कदमी से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं काशिफ समद, जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में। तो हम देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस वक्त कोरोना के मरीजों को देखने में, हैंडल करने में, इलाज करने में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ समद साहब।
वालेकुम सलाम।
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त सभी डॉक्टरों पर, लेकिन अगर हम क्योंकि प्रोग्राम नशर कर रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान के लोगों के लिए, आप जैसे डॉक्टर्स एक तहरीक का जरिया बन सकते हैं। कुछ बताइए कि किस तरह यहाँ पर कोरोना के मरीजों को आपने देखा अपने हॉस्पिटल में, और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या आप कहना चाहेंगे उन एक्सपीरियंसेस की रोशनी में हमारे सुनने वालों से जो इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं।
जी तो बेसिकली तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले हमारे शहर बफलो में जो पेशेंट्स की तादाद थी वो एकदम से बढ़ने लग गई कोरोना की। जैसे सबको पता होगा इनिशियली तो न्यूयॉर्क सिटी से जो मेन एपिसेंटर कहलाया जाता था क्योंकि वहां पे केसेस ज्यादा थे, लेकिन हमने 5 हफ्ते पहले तकरीबन केसेस देखना शुरू किए कोरोना के। तो इनिशियली बहुत कम पेशेंट्स थे, फिर एक हफ्ते के बाद एकदम से बहुत ज्यादा लोड हो गया पेशेंट्स का। हम जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वो 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कवर करता है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 200 से 300 मरीज एट टाइम कोरोना के दाखिल हुए थे। ज्यादातर इनकी जो पेशेंट्स हमने एडमिट किए हुए थे उनकी उम्र जो थी ज्यादातर 65 से ज्यादा 75 साल 65 से ऊपर साल उम्र के मरीज थे। तो पहले ज्यादातर तो जो आते हैं नर्सरी वो हम स्टेबल होते हैं, मेडिकल फ्लोर पे एडमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो एकदम से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उनको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दरकार होती है क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल नहीं बरकरार रख सकते, तो फिर उनको आईसीयू में लेके आना पड़ता है। और फिर ज्यादातर जो आईसीयू में होते हैं उनको इंक्यूबेट करना पड़ता है, मतलब जो एक मसनूई मशीन के जरिए उनकी मदद की जाती है सांस लेने में। तो वो काफी ज्यादा थे। जब हमने देखना शुरू किया तो हमारे आईसीयू में तकरीबन 20 से 25 इस तरह के काफी मरीज थे जो बहुत ज्यादा बीमार थे। और जैसे मैंने कहा ज्यादातर उनमें से उनकी उम्र 65 से ऊपर थी। जो जिस ज्यादा जिनकी तबीयत तश्वीशनाक होती है उन लोगों में ज्यादातर पहले से काफी वो अमराज के शिकार होते हैं, जैसे दिल के मरीज होते हैं, डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है उनका, तो उनको मैनेज करना काफी मुश्किल काम होता है। और ये सारे लोग तकरीबन औसतन तकरीबन 2-3 हफ्ते उस मसनूई मशीन पे होते हैं वो जो उनको मदद करता है सांस लेने में।
उसके बाद हाँ सॉरी मैं यही सवाल अगला था कि उसके बाद वो सरवाइव करते हैं या नहीं सरवाइव करते।
तो जी जो सर्वाइवल रेट है वो काफी कम है क्योंकि जैसे आपको पता है शुरू में कोरोना के मतलब कोई खास इसका तो कोई वो क्योर हमारे पास है नहीं या कोई खास इलाज है नहीं। तो जैसे सारी दुनिया में डिफरेंट रिसर्च हो रही है कौन सी दवाई इसके लिए बेहतर होगी, तो जैसे जैसे ये मतलब आपके यूरोप से और चाइना से डिफरेंट रिसर्च आ रहे थे, तो जो जो ट्रीटमेंट हम यूज कर रहे थे इनिशियली तो काफी ज्यादा मतलब लोग सर्वाइव नहीं कर रहे थे। बाद में जो थोड़ी बहुत रिसर्च आई कि मतलब इसमें आपके खून का मसला होता है, ब्लड क्लॉट्स छोटे छोटे बनते हैं, तो उन्होंने मतलब रिसर्च दिखाई कि कोई एक स्पेसिफिक दवाई होती है जो खून को पतला करती है ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो जब वो हमने यूज करना शुरू किया तो फिर भी इतना सर्वाइवल रेट इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन एक दो इस तरह के केसेस थे जिसमें हमने उनकी बेहतरी नजर आई है हमें। तो अभी एग्जैक्टली तो बताना आई थिंक मेरी तरफ से गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट हमारे स्पेसिफिक हॉस्पिटल जिसमें मैं काम कर रहा था उसमें सर्वाइवल रेट 10-20% से भी कम लोग थे जो कि एक दफा वो उस मसनूई मशीन पे चले जाते हैं तो वो उसे बाहर निकल मतलब उसे हटना और फिर घर वापस जाना तो काफी कम लोग हमने देखे।
तो कौन सी खास दवाएं जो आप लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं बता सकेंगे आप?
तो इनिशियली काफी न्यूज पे स्पेशली अमेरिका में तो बहुत ही चर्चा रहा उसका, जो हमने सुना इनिशियली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एज़िथ्रोमाइसिन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको काफी दफा हाईलाइट किया हुआ, तो पहले तो हम वो यूज कर रहे थे, अभी भी कुछ डॉक्टर्स अभी भी वो यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद लोगों को पता ना पता, लेकिन रिसर्च के मुताबिक उसमें इतना फायदा नजर नहीं आया कि उससे इस मर्ज का कोई इलाज डेफिनेटली हो सकता है। तो अभी भी वो यूज कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स, लेकिन जैसे मैंने कहा वो हमें स्पेसिफिक वो क्यों नहीं नजर आया इन दवाइयां यूज करने में।
तो फिर कुछ और क्या अल्टरनेट क्या हो रहा है इस वक्त?
अल्टरनेट तो अभी एक दूसरी इन्होंने दवाई वो भी रिसर्च की रेमडेसिविर के नाम से, वो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक मतलब खास कंडीशंस के अंदर यूज किया जाता है, सारे पेशेंट्स में नहीं यूज होता क्योंकि उसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो लोगों को पहले ध्यान में रखना पड़ता है इससे पहले कि वो उस पेशेंट के लिए यूज करें।
तो फिर क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त पेशेंट्स की तादाद? आपने कहा कि बफलो के आपके हॉस्पिटल में तो कम हो गई है, लेकिन ओवरऑल तो न्यूयॉर्क में कुछ बेहतरी आई है?
जी, न्यूयॉर्क सिटी और जो बाकी सिटीज है इनमें फर्क ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब आप एक शहर की आबादी को भी मद्देनजर रखते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी इतना बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादातर छोटे से एरिया में मतलब अपार्टमेंट्स हैं काफी ज्यादा, तो उन जो एक दूसरे को एक्सपोजर करने का वो चांस है वो न्यूयॉर्क सिटी के जैसे शहर में बहुत ज्यादा होता है। बफलो जो है वो थोड़ा सा मतलब कह लें छोटे शहर है और आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो हम ये सोशल डिस्टेंसिंग टर्म यूज करते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा आसान है ना कि न्यूयॉर्क सिटी में, क्योंकि अगर आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप वही एलिवेटर यूज करेंगे, आप वही एंट्रेंसेस यूज करते हैं, तो कुछ लोग मास्क अगर नहीं पहनते तो ऑब्वियसली अगर एक ही एलिवेटर में या एक ही छोटे से स्पेस में है तो वो ज्यादा चांस है कि आप किसी और को वो वायरस ट्रांसफर कर दें।
तो ये सूरत हाल है। और जो पेशेंट्स फौत हो जाते हैं उनके लिए भी फिर तदफीन का भी खास एहतमाम वैसे नहीं हो रहा जैसा कि पहले हुआ करता था?
तो हमारे हॉस्पिटल में तो अगेन बफलो क्योंकि आबादी के हिसाब से इतना बड़ा शहर नहीं है तो यहाँ पे इतना मसला अभी सामने नहीं आया। न्यूयॉर्क सिटी अगेन वो बहुत बड़ा शहर है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, उधर एक उधर आई थिंक आज अमेरिका के लिहाज से 1/3 जो टोटल केसेस है अमेरिका में वो सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी या न्यूयॉर्क स्टेट के हैं, तो वहां पे ज्यादा मसला नजर आ रहा है ना कि बफलो में।
तो आपने जिन पेशेंट्स का इलाज किया या जिनको आपने हैंडल किया, वो टोटल कितने थे और उनमें से कितने सर्वाइव किया जब वो आपके जेरे इलाज थे आपके हॉस्पिटल में?
तो मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन 40 से 50 पेशेंट टोटल देखे हैं, जिसमें से आधे कम से कम आईसीयू में थे, जो कि वेंटिलेटर मशीन पे थे। उसमें से जैसे मैंने कहा तकरीबन 30 में से फर्स्ट करने हैं, 16 से 17 जो पेशेंट थे वो सर्वाइव नहीं किया। उन लोग उन्होंने सिर्फ दो तीन थे जो कि सरवाइव कर गए थे, और वो काफी मतलब यंग थे एज कम्पेयर टू जो ये बाकी सारे थे। एक हमारा 40 साल का पेशेंट था, एक 50 साल का, और कुछ एक था जो 38 साल का था। तो उनमें से जो दो पेशेंट थे उनको और कोई मर्ज नहीं था, ना उनको ब्लड प्रेशर था, ना दिल की कोई बीमारी थी, ना ज्यादती था। तो ये सारी दुनिया
जी
में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि जिनको ज्यादा अमराज ना लाहक हो उनका चांस ज्यादा होता है सर्वाइव करने
तो
का।
बाकी जो 20 पेशेंट थे वो रिकवर होकर चले गए?
वो हाँ, वो जनरल मेडिकल वार्ड में थे, उनको थोड़े बहुत ऑक्सीजन की जरूरत थी, 2-3 दिन उनको सांस की तकलीफ थी, तो उनको 2-3 दिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन पे रखा। जब उनकी बुखार उतरा और वो थोड़ा बहुत बेहतर फील करने लगे, और ऑक्सीजन जब उनको नहीं दरकार था तो फिर वो उनको घर डिस्चार्ज कर दिया था।
कर दिए। और घर जाकर भी फिर उन पर कभी कोई वापस भी आया?
अभी तक जो मैंने देखे हैं उनमें से तो कोई वापस नहीं आया। लेकिन अगर वो जिस तरह मैंने कहा हमारे एक डेजिग्नेटेड कोरोना के लिए अस्पताल था, अगर वहां पे गए वो मैंने फॉलो नहीं किया शायद। लेकिन हमारे जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिली है मतलब दोबारा कोई पेशेंट दाखिल नहीं हुआ कोरोना के साथ हमारे सिस्टम में।
अच्छा, तो और जो डॉक्टर्स हैं उनमें क्या इस कोरोना का कोई इन्फेक्शन आपने देखा आपके हॉस्पिटल में या इर्द-गिर्द के हॉस्पिटल्स में?
अपने तौर पे तो मैं जिन डॉक्टर के साथ मैंने काम किया है, मुझे सिर्फ दो डॉक्टर्स का पता है जिनको कोरोना इन्फेक्शन खुद हुआ। एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, काफी सीनियर हैं, 65 साल उनकी भी उम्र है कुछ। तो वो तो काफी मतलब उनको ना हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उनको बस 2 हफ्ते घर में कहा था कि आप घर पे रहें, उन्होंने वो 2 हफ्ते घर पे गुजारे, और उसके बाद अभी फिर दोबारा उन्होंने काम शुरू कर दिया। जो हमारे दूसरे डॉक्टर थे वो काफी बीमार रहे, अभी भी हैं, अभी भी हॉस्पिटल में, पिछले 3-4 हफ्तों से ही वो हॉस्पिटल और आईसीयू में।
तो आप क्या एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपके पास तमाम जरूरी सामान जो है इक्विपमेंट वो मौजूद होता है सारे डॉक्टर्स के पास ताकि वो महफूज रहें अपने मरीजों का इलाज करते हुए इसकी इन्फेक्शन में मुब्तला ना हो?
जी, एहतियाती तदाबीर तो जैसे ही कि आपने दिन में जितनी बार भी आप हाथ धो सकें, मास्क पहन पहन के रखें, जो एक हद बताई हुई है, डिस्टेंस बताई हुई है कि आपने दूसरों से दूर रहना है, स्पेशली अगर कोई छींक रहा है या वो खांस रहा है तो उनसे थोड़ा दूर रहें। वो तो अभी अस्पताल में वो हमें चेक किया जाता है एंटर होने से पहले कि अगर किसी को बुखार है, थर्मामीटर के साथ चेक करते हैं, अगर किसी का थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो उनको वापस भेज देते हैं। फिर एंट्रेंस पे ही हमें मास्क मुहैया किए जाते हैं, वो फिर पहन के हम अंदर अपने जो स्पेसिफिक जहाँ पे हमें काम करना होता है वहां पे चले जाते हैं। फिर अगर हमें कोरोना के पेशेंट्स देखने पड़ते हैं तो हमें उस N95 और गाउन और हेड कवर और वो सारा कुछ पहनने को देते हैं, क्योंकि شہروں میں تو جس طرح ہم نے سنا ہے کہ کافی زیادہ مسئلہ ہے پروٹیکٹیو یہ چیزیں ملنے کا, وہ میں پھر یہ کہوں گا نیو یارک سٹی میں کیونکہ بڑا شہر ہے کافی زیادہ لوگ ہیں تو شاید وہاں پہ ان کو obviously مسئلہ ہوا ہوگا, لیکن ہمارے اپنے ہاسپٹل سسٹم میں ابھی تک کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں پڑا جدھر ہمیں ماسک نہ مہیا کیے جائیں یا کوئی گاؤن شاؤنس کی کمی سامنے آئی.
تو ایک دن میں انہوں نے ابھی ڈاکٹر سہور نے ہمیں بتایا کہ ایک دن میں کم از کم 12 مرتبہ گاؤن بدلنے پڑتے ہیں ایک جو کرونا کا جو ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہوتا ہے.
جی آپ کو اگر آپ ایک پیشنٹ کے ہمارا آئی سی یو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اگر آپ ایک گاؤن اور ایک ماسک یوز کرتے ہیں N95 ماسک تو آپ کو یا تو وہ صرف 5 گھنٹے کے لیے مسلسل طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ 3 ڈفرنٹ مریض اس ماسک پہنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے 3 مریض دیکھ لیے تو آپ کو ماسک اور گاؤن چینج کرنا پڑتا ہے. تو جیسا میں نے کہا شروع میں تو ہمارے پاس کافی زیادہ پیشنٹس تھے تو ہم ہر دوسرے یا تیسرے پیشنٹ دیکھنے سے پہلے پورا گاؤن اور ماسک چینج کرتے تھے. تو اوسطن تقریباً اتنا ہی بنتا ہے, تقریباً اگر آپ کے پاس 20-25 آئی سی میں کے پیشنٹس ہیں تو 8 سے 10 دفعہ تو چینج کرنا پڑتا.
تو بے حد شکریہ ڈاکٹر کاشف سبت, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بفلو میں جہاں آپ کرونا کے مریضوں کا علاج کر چکے ہیں اور آج کل دوسرے مرکز میں ہیں جہاں کرونا کے مریض کم ہیں, لیکن آپ کو ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے کرونا کے 200 مریضوں کے ہاسپٹل میں کام کیا اور 40 مریضوں کو آپ نے خود بھی دیکھا جس میں سے 20 سروائیو بھی کیے اور صرف یعنی جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان میں سے صرف 3 سروائیو کر سکے اور 17 جو تھے وہ انتقال کر گئے. اور یہ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ کیا ایک ڈاکٹر اور خاص طور پر ایک پاکستانی ڈاکٹر جب ایسی جگہوں پر کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے تو کیا اس کی فیلنگز ہیں, کیا وہ کہنا چاہتا ہے کسی سے بھی اپنے عزیزوں سے سننے والوں سے, تو کہیے.
جی سب سے زیادہ افسوس مریضوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جس طرح پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں اگر نارمل اگر یہ کرونا کا ٹائم نہ ہوتا تو جب پیشنٹ سروائیو نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اپنے فیملی کو ساتھ پانا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ کرونا وائرل انفیکشن ہے تو اس کو روکنے کے لیے فیملیز کو اجازت نہیں ہوتی مریض کو دیکھنے کے لیے, تو اس ٹائم پہ کافی افسوس ہوتا ہے کیونکہ کچھ پیشنٹس ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں سروائیو کر پائیں گے لیکن پھر بھی ان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہوتی, تو اس ٹائم پہ کافی برا فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے عزیز رشتے داروں کو ساتھ ہونے کے لیے, تو وہ کافی مشکل ایکسپیرینس,
لیکن
تو وہ بیسیکلی وہ فیس ٹائم اور فون سے بات کرواتے ہیں.
بہت تکلیف دہ حالات ہیں اور پوری دنیا ہی ان مسائل کا سامنا کر رہی ہے, لیکن ڈاکٹرز اور نرسیں اور طبی عملہ جو ہے اس کے لیے ایک بہت ہی آزمائش کا وقت ہے اور سبھی اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے, اور ہمارے پاکستانی جو دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ پاکستانی ڈاکٹرز بھی کس طرح اس وقت اس مشکل وقت میں جن جن ملکوں میں بیرون ملک موجود ہیں وہ کس طرح ہمت سے کام لے کر اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. ہماری دعا کہ آپ تمام ڈاکٹروں کو اور سبھی کو جو طبی عملہ ہے ان کو خدا تعالیٰ لمبی عمر دے اور کرونا وائرس کے عذاب سے یا مشکل سے محفوظ رکھے. بے حد شکریہ ڈاکٹر کاشف سمت, آپ نے بفلو کے ایک ہاسپٹل سے ہم سے گفتگو کی اور ہمارے سننے والوں کو بہت مفید معلومات فراہم کی, بے حد شکریہ.
بہت بہت شکریہ.
تھینک یو. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے.
یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.